ओम शांति। एक हाथ की ताली बजाकर शीलू बहन का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। सभी जानते हैं शीलू बहन को, कौन नहीं जानता? शांतिवन में भी क्लासेस करते हैं, पीस ऑफ माइंड में भी देखते हैं, लेकिन आज इतना नजदीक से मिल रहे हैं। आज दिन में हम बैठे थे, शीलू बहन बैठी थी यहाँ बाहर आंगन में, पांडव भवन के आंगन में। माताएं आई जो नीचे भट्टी में आई हुई हैं, ऊपर देख देख कर इतनी फोटो ली। दीदी इतना नजदीक से तो हम आपको पहली बार देख रहे हैं, और आप तो रोज ही देखेंगे यहाँ पर। शीलू बहन वैसे कल जा रहे हैं आप विदेश में सेवा बाबा की करने के लिए, तो आपका बहुत बहुत इस भट्टी में हम स्वागत करते हैं। बचपन से ही आपको ईश्वरीय ज्ञान छोटी सी अल्प आयु में ही मिला। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से आपने विज्ञान में स्नातक शिक्षा प्राप्त करके बाबा की सेवाओं में समर्पित हो गए, और 100 से अधिक देशों में जाकर के आपने बाबा का ये संदेश दिया है, और कल भी आप जाने वाले हैं, कल परसों शायद जाने वाले हैं आप, लेकिन हमें क्लास करा के जाएंगे, ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। और किसी भी आध्यात्मिक विषय पर आप बहुत अच्छी तरह से बोलती हैं। बाबा ने आपको 2 बहुत सुंदर वरदान दिए हैं, आपको बाबा ने हर की पौड़ी और आपकी वाणी में सरस्वती का वास है, ये 2 वरदान बाबा अव्यक्त बाबा ने आपको कैसे दिए उसका अनुभव भी आज हम शीलू बहन से सुनेंगे। सरस्वती के वास की बात तो आप सब अनुभव करते ही हैं। जो पहला हमारी वो कैसेट बना था कमेंट्री का शीलू बहन की आवाज में, और वो आवाज हमें कैसे इस दुनिया से पार ले जाती है, कमेंट्री सुनते जाते हैं और कितनी सुंदर अनुभूतियां होती जाती हैं। हर की पौड़ी का कैसे बाबा ने आपको टाइटल दिया, वह हम शीलू बहन के मुख से ही उनका अनुभव सुनेंगे। आपके लिए मैं सिर्फ 2 शब्द कहूंगी, आपकी ज्ञान की मीठी टिकलू टिकलू, आपकी ज्ञान की मीठी टिकलू मिटा देती है माया की फ्लू, मिटा देती है माया की फ्लू। आप बाबा की है हर की पौड़ी, आप बाबा की हैं हर की पौड़ी, गहन अनुभूति द्वारा आप पहनाती हैं हम सबको याद की दौड़ी, आप हम सबको पहनाती हैं याद की दौड़ी। आज अभी हम शीलू बहन जी से क्लास करेंगे, भट्टी का लक्ष्य उद्देश्य क्या है, और बहुत सुंदर अनुभव सुनेंगे।
आपने अपना परिचय दिया, हम एक ही राशि के, ये शील में शीलू। अपना परिचय भी दो।
मेरा लौकिक नाम शील है, और साकार बाबा के समय से ही ज्ञान में चलते हैं। बस जब हम बहुत छोटे थे उस समय मैं 8th-9th में पढ़ती थी। मैं आपको कल सारा अपना अनुभव सुनाऊंगी, आज तो हम शीलू बहन से लाभ लेंगे। तब से ज्ञान में है, बाबा की बहुत पालना ली है, और जयपुर से हमने ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। जयपुर महारानी कॉलेज से बी ऑनर्स करने के बाद 1970 में अपना जीवन बाबा की सेवाओं में हमने समर्पित किया। 69 का अनुभव बहुत सुंदर अनुभव है मेरा, जो मैं कल आपको सुनाऊंगी कि कैसे बाबा जब व्यक्त हुए और मुझे क्या प्रेरणा मिली। तो अभी मैं राजस्थान के कई स्थानों पर सेवा की है, अभी वर्तमान समय में जोधपुर सेंटर पे बाबा की सेवाओं में रहती हूँ। ओम शांति।
ओम शांति। मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, पुण्य भूमि, बाप दादा की कर्म भूमि, परिवर्तन भूमि, जितनी महिमा गाएं उतनी कम इस मधुबन भूमि की है। और ऐसी भूमि पर आप सभी योग तपस्या करने लिए आए हैं, तो प्यारे बाप दादा, सभी दादियां, सर्व मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज के दिन जितनी ताली बजानी है बजाना, कल से नहीं बजाना, कल से नहीं, क्योंकि कल से एक हाथ की ताली बस, आज भले। तो बाबा के घर में आए हो, पिता के घर में आए हो, सो अपने घर में आए हो, तो जरूर जैसे ही आप आए, आपके अंदर तो वहां ट्रेन में जैसे ही चढ़े होंगे तो आपके तो खुशी का पारावार नहीं चढ़ नहीं रहा होगा, क्योंकि मधुबन जा रहे हैं, वो भी पांडव भवन में। शांतिवन में तो बहुत बार आए होंगे, ज्ञान सरोवर में भी आए होंगे, पांडव भवन में भी आए तो होंगे, लेकिन कई इसमें होंगे जो पहली बार यहाँ रह करके भट्टी कर रहे हैं, वो हाथ उठाएं जो पहली बार। अरे बाप रे, सारे ही पहली बार मधुबन में रहना रह रहे हैं, जो पहले भी मधुबन में रहे हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, जो पहली बार मधुबन में रह रहे हैं वो हाथ उठाएं, फिर से उठाएं। अच्छा, भट्टी तो सब पहली बार कर रहे होंगे, लेकिन पहली बार मधुबन में रह रहे हैं तो ये भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और दूसरा तो और भी बड़ा सौभाग्य कि आप सब भट्टी में आए हैं, क्योंकि कईयों की लिस्ट होगी और लिस्ट में कईयों के नाम होंगे आने की, लेकिन ऐन मौके पर उनको कोई न कोई काम पड़ गया और उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया। और ऐसे भी होंगे जो जिनका कोई नाम भी नहीं था, लेकिन लास्ट मिनट बहन जी ने कहा कि देखो एक सीट खाली है, आप चलेंगे, और फट से आप तैयार हो गए और हाँ कर दिया। तो बाबा कहते हैं जो ट्रेन में बैठ गए और फिर यहाँ मधुबन में पहुंच गए वो सबसे भाग्यशाली, तो इसलिए अपने लिए खूब ताली बजाओ। तो मधुबन में जैसे ही आप पहुंचे, आपको अकोमोडेशन मिली, तो उसी वक्त आपको ये काला पट्टा नहीं है लेकिन ये विजय माला है, ये विजय माला आप सबको मिल गई, विजयी भव का वरदान मिल गया आपको, और एक ठप्पा लग गया पांडव गवर्नमेंट का। कौन सा ठप्पा, क्या है इस भट्टी का नाम? संपन्न संपूर्ण बनने लिए योग तपस्या, क्योंकि यही तो हम सबका उद्देश्य है। बाबा ने शुरू से ही हमें ये उद्देश्य दिया है कि हमें संपन्न संपूर्ण बनना है। सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को विष्णु का साक्षात्कार करा करके ये उनको उद्देश्य दे दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम्, विष्णु द्वारा उनको वरदान मिल गया, तो तुम मेरे जैसे ही हो, जैसे मैं देवता हूँ तुम भी मेरे जैसे ही हो। तो उस समय तो ब्रह्मा बाबा को समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है, लेकिन ये विष्णु द्वारा वरदान मिलना माना कि शिव बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं तुमको ऐसा बनना है। तो केवल एक ब्रह्मा को ही वरदान नहीं मिला ये तत्त्वम का, लेकिन हम सब भी उनके बच्चे, हमको भी यही वरदान भगवान ने दिया जैसे ही हमारा अलौकिक जन्म हुआ। अलौकिक जन्म लेते ही बाबा ने बहुत बड़ी गिफ्ट दे दी हमें, एक तो ये वरदान दे दिया, क्योंकि देवता बनने का लक्ष्य तो देते ना, जो भी नए आते हैं उनको क्या कहते हैं, यहाँ क्या पढ़ाई पढ़ाई जाती है, मनुष्य से देवता बनने की। और फिर उसमें ये लक्ष्य देने के बाद फिर और बातें बताई, तो इसीलिए ये तो बड़ा उद्देश्य है ही, और उसके लिए दिव्य बुद्धि की गिफ्ट बाबा ने दे दी। जैसे ही आत्मा का ज्ञान मिला, परमात्मा का ज्ञान मिला, तो जैसे हमारी बुद्धि शुद्ध होने लगी, तो एक दिव्य बुद्धि की गिफ्ट सौगात हमारे जन्म दिन की सौगात भगवान ने हमें दी। और फिर कई अनुभव किए होंगे योग में भी, तो वो भी सब जैसे भगवान के वरदान कहो, गिफ्ट कहो, हम बच्चों को मिले। तो बहुत लंबी यात्रा आपने आध्यात्मिक ताकि की होगी, कईयों की इतनी लंबी न भी होगी, लेकिन या तो बाबा कहते अभी तक तो कोई सीट फिक्स हुई नहीं है, सब इस म्यूजिकल चेयर खेल होता है ना, तो कोई भी कुर्सी अभी तक ऑक्यूपाई नहीं हुई है, कोई नहीं बैठ पाया, केवल बाबा मामा के, उनको ही उनका टाइम क्या है, उनका पद वो बाबा ने डिक्लेयर कर दिया, बाकी तो और किसी का भी पद डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो इसलिए सब सीट खाली है। तो कैसे जो पीछे आने वाले हैं वो आगे जा सकते हैं, मार्जिन बहुत है, इसलिए नयों को बाबा क्या वरदान देते हैं, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। और पुरानों को क्या वरदान देते हैं, पुरानों को वरदान देते हैं ओल्ड इज गोल्ड बिकॉज इट कैन मोल्ड। तो ओल्ड पुरानी है तो सच्चा सोना है, और सच्चा सोना तो मुड़ सकता है क्योंकि फ्लेक्सिबल हो जाता है, नरम हो जाता है। तो कैसे सच्चा सोना बने, योग में तपे, योग की अग्नि में तपे। तो इसीलिए भट्टी में सब योग की अग्नि में तपने के लिए आयो, तभी तो रियल गोल्ड बनेंगे ना, सच्चा सोना बनेंगे, सारी खाद निकल जाएगी। तो कितनी खाद हमारी द्वापर युग से पड़ी है, यूं तो कहो बाबा ने कहा सतयुग से एक एक सीढ़ी नीचे उतरते आए, 16 से 14 कला बने, लेकिन धीरे धीरे सीढ़ी उतरे नीचे, लेकिन द्वापर से तो सीढ़ी उतरे नहीं लेकिन गिरे, जैसे एक होता है सीढ़ी उतरना धीरे धीरे तो चोट नहीं लगती है, धीरे धीरे उतर रहे हैं, लेकिन अगर गिरे सीढ़ी से तो चोट तो लगती है, और कितना जल्दी नीचे गिर जाते हैं, ऐसे नहीं एक एक कदम नीचे गिरते हैं, फट से गिरते जाते हैं, चोट लगती जाती है और एकदम पट पर आ जाते हैं। तो बाबा भी कहते हैं द्वापर युग से तो तुम कितना जल्दी गिरे, जो कहा 14 कला से लेके एकदम आधा कल्प तो 2 कला ही कम हुई, और बाकी आधा कल्प और जितनी भी 14 कलाएं एकदम सब खत्म हो गई। अब वो कलाएं फिर से धारण करनी है, और उसके लिए संपन्नता और संपूर्णता चाहिए। तो कई भाई बहने हमसे पूछते हैं दोनों में अंतर क्या है, संपन्न और संपूर्ण में अंतर क्या है। वैसे जो देवताओं की महिमा है उसमें ही अंतर है, पता चलता है। देवताओं की महिमा में क्या कहते हैं, सर्व गुण संपन्न। तो संपन्न किस में बनना है, गुणों में बनना है। फिर है 16 कला संपूर्ण, तो संपूर्ण किस में बनना है, कलाओं में। तो कौन सी कलाएं, आत्मा की पवित्रता की कलाएं। तो जैसे चंद्रमा की भी कलाएं घटती बढ़ती है, तो 16 दिन लगते हैं ना, 16 दिन माना अमावस्या आई उसके उसी दिन से गिनती करो तो ठीक 16वें दिन पूर्णमासी आती है। तो कैसे, कहां एकदम अमावस्या और कहां एकदम पूनम। तो संपन्न और संपूर्ण माना फुल, तो 16 कलाओं में संपूर्ण अर्थात पवित्रता की जो आत्मा की कलाएं हैं उसमें एकदम संपूर्ण, एक कला की भी कमी नहीं। और सर्व गुणों में संपन्न, तो जैसे चंद्रमा पूरा होता है तो वो सर्व, वो संपन्न भी होता है और संपूर्ण भी होता है। संपन्न माना उसके प्रकाश में संपन्न, रोज रोज देखते हैं तो फर्क पड़ता है ना चंद्रमा के प्रकाश में, लेकिन पूर्णमासी पर पूरा प्रकाश उससे दिखाई देता है। तो वो संपन्न होता है प्रकाश में और संपूर्ण होता है आकार में, फुल जो उसका आकार है। तो उसी प्रकार आत्मा भी संपन्न और संपूर्ण बने तो सर्व गुण जो आत्मा के भी गुण हैं और देवताओं के भी गुण हैं उन गुणों में संपन्न बने, जिसको बाबा कहते हैं अनादि गुण और आदि गुण। तो हमारे अनादि गुण कौन से हैं, जो सात गुण बताए जाते हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये हमारे मूल गुण हैं। और तो ये जो गुण है उसमें भी संपन्न, और साथ साथ जो आदि गुण हैं, जो देवताओं के गुण माने जाते हैं, यहाँ लिस्ट लिखी हुई है हिस्ट्री हॉल के बाहर, 36 गुणों की लिस्ट लिखी हुई है, इन गुणों में सारे गुण आ जाते हैं जो देवताओं के गुण हैं। और ये सारे गुण हमारे में अगर हो तब हम कहेंगे हम सर्व गुण संपन्न हैं। और पवित्रता की 16 कलाएं, इतनी पवित्रता जो बाबा कहते हैं मन वचन कर्म तो क्या, स्वप्न में भी अपवित्रता न हो, स्वप्न में भी न हो, क्योंकि मन वचन कर्म तो फिर भी हमारे वश में, कर्म तो बिल्कुल हमारे वश में है, वचन भी हमारे वश में है, संकल्प भी हमारे वश में है, हम जो सोचना चाहें सोच सकते हैं, लेकिन स्वप्न वो तो हम तो सोए हुए हैं और क्या क्या स्वप्न देखते हैं। तो स्वप्न में भी पवित्रता इतनी भरी हुई हो जो अंश मात्र भी कोई अपवित्रता न हो, इसको बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण, इतने हद तक पवित्रता। और वो पवित्रता तब आती है जब हम इतना पकते हैं योग की अग्नि में, इसको बाबा कहते हैं ज्वालामुखी योग, बिल्कुल अशरीरी अवस्था। तो एक होता है देही अभिमानी अवस्था, दूसरा होता है विदेह अवस्था, और तीसरा होता है अशरीरी अवस्था। तो देही अभिमानी स्थिति तो हमेशा हमारी सारा दिन रहे, ये हमारा लक्ष्य हो, क्योंकि तभी हम बिल्कुल सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन सकेंगे। कई दुनिया में हम देखते हैं ना वैल्यूज की, मूल्यों की बहुत बातें करते हैं, ये गुण होना चाहिए, ये गुण होना चाहिए, सब बताते हैं, लेकिन वो गुण धारण करने वाला कौन, वो आत्मा है ये पता नहीं है, और फिर उन गुणों का स्रोत कौन है, वो परमात्मा है ये पता नहीं है। तो बातें तो बहुत करते हैं गुणों की, लेकिन वो क्यों नहीं उन गुणों की अनुभूति होती है, क्योंकि धारण करने वाला और गुणों का दाता उसका तो पता ही नहीं है। तो न आत्मा का ज्ञान है न परमात्मा का ज्ञान है। और यहाँ तो सबसे पहले जब कोर्स कराते हैं तो क्या देते हैं कोर्स में, आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान। और हर मुरली में बाबा भिन्न भिन्न तरीके से कैसे परमात्मा का ज्ञान सबको दो, ये बाबा बताते हैं। आज भी बाबा ने कहा ना बाप टीचर सतगुरु, उस दिन भी बाबा ने कहा कि दो बाप का परिचय। तो हर रूप में हर मुरली में भिन्न भिन्न तरीके बाबा बताते हैं। लोग तो हम लोगों को देखते ना कहते ये ब्रह्मा कुमारी आ गई, ओम शांति वाले आ गए, ऐसे कहते हैं। फिर कहते ये लोगों का ज्ञान क्या है, बस आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, और कुछ इनको आता ही नहीं है। कई ऐसे कमेंट करते हैं आत्मा परमात्मा, बस सारा दिन यही रटते हैं, यही बोलते हैं, लेकिन इसके बिना आध्यात्मिकता कहाँ है। आध्यात्मिकता माना ही जिसमें आत्मा का ज्ञान हो और परमात्मा का ज्ञान हो, फिर उसके आगे कर्मों का ज्ञान, समय का ज्ञान, ये अलग है, लेकिन आत्मा परमात्मा तो बेसिक है, ये तो बिल्कुल फाउंडेशन है। तो तभी तो ये सारे गुण आएंगे। तो मैं आत्मा हूँ, इन गुणों की स्वरूप हूँ, और इन गुणों का दाता परमात्मा है, जिनसे योग लगाकर हम संपूर्ण बनते हैं। तो ये जब धारणा हमारी पक्की हो जाती है तब हम इतनी पवित्रता की अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन पहले है देही अभिमानी स्थिति। तो देही अभिमानी स्थिति माना चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते भी, सोते जागते सोते भी, यानी देही अभिमानी स्थिति में सो गए, आत्मा ने कैसे शरीर से न्यारी हो गई। तो इसी प्रकार ये देही अभिमानी स्थिति, और दूसरों को भी देखो तो भ्रकुटि में चमकता हुआ आत्मा देखो, वही देखो। इसलिए जब भी हम ब्राह्मण आपस में मिलते हैं तो हमारे मिलने की विधि क्या है, सबसे पहले दृष्टि है ना, दृष्टि में क्या देखते हैं, आत्मा को देखते हैं, ये है दृष्टि। ऐसे नहीं आंखों में आंखें मिलाते हैं, कोई त्राटक थोड़ी करते हैं, लेकिन आत्मिक दृष्टि। तो सबसे पहले आत्मा को हम देखते हैं, वो भी हमें उस दृष्टि से देखते कि ये भी आत्मा है, और फिर ओम शांति। तो ओम शांति कहना माना आत्मा, माना दृष्टि, और फिर ओम शांति कहा माना आत्मा को याद दिलाया, हे आत्मा तुम्हारा स्वधर्म शांति है। तो उस आत्मा ने भी हमको याद दिलाया कि हे आत्मा तुम्हारा स्वधर्म शांति है। तो दोनों ने ओम शांति का, दुनिया में भी आपस में मिलते हैं तो राम राम जय श्री कृष्ण है ना, बहुत कुछ कहते हैं, और हम लोग कहते हैं ओम शांति, इसलिए ओम शांति वाले हो गए। लेकिन ओम शांति का कितना गहरा अर्थ है ये दुनिया वाले थोड़ी जानते, तो हम बच्चे ही जानते। तो हम लोग भी ऐसे कोई रूटीन न बना ले, ओम शांति ओम शांति, हम तो देखते हैं सारा दिन, हम जैसे ही चलते हैं वो पीछे से भी ओम शांति बहन जी, अरे पीछे पहले मुड़ के देखो कौन है। आगे से नहीं कहेंगे, वो पीछे से ही कहेंगे ध्यान खिंचवाने के लिए ओम शांति। और फिर ओम शांति चलो हम रुक गए और पीछे मुड़ के देखा भी, फिर कहेंगे बहन जी एक फोटो एक फोटो एक फोटो। इसलिए ओम शांति का, ताकि हम रुके और पीछे मुड़ के देखे और उनसे फोटो निकाले, क्योंकि सब फोटोग्राफर बन गए, हर एक के पास मोबाइल है। पहले तो भाई एक व्यक्ति के पास होता था, अभी तो सभी फोटोग्राफर बन गए और सेल्फी लेने में भी इतने होशियार है, कोई भले और कोई न मिले तुरंत फटाफट सेल्फी ले लेते हैं। खैर वो तो दूसरी बात है, लेकिन बाबा हम बच्चों को क्या सिखाते हैं कि बच्चे देही अभिमानी भव। तो देही अभिमानी माना हर कदम पर मैं आत्मा देख रही हूँ, सुन रही हूँ, बोल रही हूँ, हर कर्म कर रही हूँ, ये बहुत जरूरी है। और आत्मा को देख रही हूँ तो ऑटोमेटिकली आत्मा को देखना, आत्मा को से सुनना माना आत्मा के गुण दिखाई देंगे, और अगर अवगुण दिखाई दे रहा माना आत्मा को नहीं देख रहे, किसको देख रहे हैं, देह को देख रहे, तभी अवगुण दिखाई देता है। अगर गुण आत्मा को देख रहे हैं तो फिर कोई अवगुण नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आत्मा तो, इसलिए भक्ति मार्ग में वैसे ही कह दिया आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा तो सदा ही पवित्र है। तो आत्मा सदा पवित्र भल हम कहते नहीं है, पर लक्ष्य तो यही है ना, हमारा उद्देश्य यही है कि संपूर्ण पवित्र बनना है। तो इसलिए आत्मिक दृष्टि अपनाना है। अंग अंग बाबा कहते हैं तुम्हारा शीतल हो, ये देही अभिमानी स्थिति की निशानी है। एक एक अंग अंग शीतल, आंखें भी शीतल, कान भी शीतल, मुख भी शीतल। और ये नहीं कि चलो महात्मा गांधी ने तीन बंदर दिखाए, बुरा न देखो, बुरा न बोलो, बुरा न सुनो, लेकिन बाबा ने इसमें दो और ऐड कर दिया, बुरा न सोचो, बुरा न करो। तो ये केवल बुरा न करो या सोचो इतना ही नहीं, बुरा की वो तो एकदम नीची स्टेज है, लेकिन व्यर्थ भी नहीं सोचना है, व्यर्थ वो भी पाप के खाते में जा सकता है, क्योंकि धीरे धीरे वो व्यर्थ भी नकारात्मक बनता जाता है, और वो नकारात्मक बन गया तो पाप के खाते में जाएगा, जरूर जाएगा। इसलिए देही अभिमानी स्थिति, और जब देही अभिमानी स्थिति है तो हम इतने हल्के, मैं आत्मा हूं तो बाबा की याद भी है, तो महसूस होता हूं अकेले तो है नहीं, बाबा मेरे साथ है। फिर दूसरी स्टेज है विदेह स्थिति, और विदेह स्थिति की निशानी क्या है, नष्टो मोह। तो किसको कहते हैं जिनकी विदेह स्थिति थी, हाँ विदेही बाबा कहते हैं ना, किसके किसके लिए कहते हैं, राजा जनक के लिए, इतने बड़े महल में रहता था लेकिन उसको उस महल का मोह नहीं था। तो किसी का में भी मोह न हो, अपनी देह में तो न हो लेकिन और किसी में भी न हो। औरों में फिर कई बार कहते हैं औरों से निकालना तो सहज है पर अपनी देह से भी मोह न हो, तो ये कहीं भी बुद्धि अटके नहीं, लटके नहीं। दादी जानकी जी तीन शब्द कहती थी, अटकना, लटकना, चटकना। फिर कई बार चलते ऐसे मटकना, मटकते हैं। तो दादी ने एक बार ये चार शब्द कहे थे, देह अभिमान में होते तो कैसे चलते हैं, जैसे मटकते हैं, और फिर अटक जाते हैं कहीं, या किसी को चटक जाते हैं। तो न अटकना है, न चटकना है, न लटकना है, न मटकना है। तो ये चार बातों से जो परे है वो विदेश स्थिति में है। तो राजा जनक का मिसाल, इसलिए दादी जानकी हमेशा ये मिसाल देती, हाथ खाली जेब खाली, और मैं हूँ दुनिया का वाली। दुनिया का वाली माना राजा, बेफिक्र बादशाह, कहीं भी अटके हुए नहीं है, फंसे हुए नहीं है। तो बाबा भी कहते हैं इसको कहेंगे विदेश स्थिति, जिसको ही बाबा कहते हैं ट्रस्टीशिप। सब कुछ किसका है, बाबा का है, मेरा नहीं। छोड़ सब संभालो जरूर, छोड़ो कुछ भी नहीं, छोड़ो कुछ भी नहीं, पर नया भी कुछ नहीं जोड़ो, क्योंकि ये सब खत्म होना है। बाबा बार बार हर मुरली में वैराग दिलाते हैं, ये सब खत्म होना है। तो इसीलिए जोड़ो, नया कुछ नहीं जोड़ो, और ये छोड़ो भी कुछ नहीं, क्योंकि जिम्मेदारियां हैं वो तो निभानी है, ट्रस्टी होके रहना है तो छोड़ना भी नहीं है। तो छोड़ो भी कुछ नहीं, नया जोड़ो भी नहीं, और कहीं भी फंसो नहीं। तो फंसो भी नहीं, छोड़ो भी नहीं, नया जोड़ो भी नहीं, तो चौथा कौन सा है, है? क्या तोड़ निभाओ। हाँ, ये है चौथा, तोड़ निभाओ। निभाना जरूर है क्योंकि छोड़कर जाएंगे कहाँ, और नया जोड़ना, जोड़ेंगे तो और हिसाब किताब बन जाएंगे, और तो तोड़ेंगे भी कैसे, क्योंकि ये तो कर्मों के हिसाब किताब है, तो ऐसे भी नहीं तोड़ सकते हैं। अगर चलो स्थूल रूप में संबंध तोड़ भी दिया पर मन बुद्धि तो जाएगा ना, तो उसमें भी कितना व्यर्थ समय चला जाता है। तो बाबा ने हमें मध्य मार्ग दिया है, ये मध्य मार्ग है। एक तरफ है बिल्कुल भौतिकवाद, संसार के जो इंद्रियों का भोग है उसमें चरम स्वरूप, वो है भोग का स्वरूप, जिसको बाबा कहते हैं भौतिकवाद। और दूसरा है बिल्कुल सन्यासी, सब माया 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 कह के छोड़ देते हैं। तो और बाबा कहते छोड़ना भी कुछ नहीं है, और ये सब जिसके लिए माया माया कहते वो माया है ही नहीं, वो तो क्या समझते, स्त्री माया है, बच्चे माया है, धन माया है, और बाबा कहते ये तो है ही नहीं माया। पर हाँ, स्त्री में वासना है तो वो माया है, धन में लोभ है माया है, बच्चों में मोह है वो माया है। तो विकार ही माया है, कोई व्यक्ति वस्तु स्थान ये सब माया नहीं है। इसीलिए छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन निभाना है जरूर, पर उसमें फंसना नहीं है, जिसको ही कमल फूल समान बाबा कहते। तो ये विदेश स्थिति, और इस विदेश स्थिति में जब हम अपना सब कुछ सोचते हैं, व्यवहार करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम व्यर्थ से बच जाते हैं, और व्यर्थ से बच गए तो हमारा समय, सांस, संकल्प शक्ति कितनी सफल होती, नहीं तो कितनी व्यर्थ जाती है। और ये जब हमारी स्थिति हो सकती है तो फिर उसके बाद अशरीरी अवस्था, योग में भी हम सहज अशरीरी बन जाएंगे, बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। कई कहते हैं ना हमारा योग नहीं लगता, हमारा योग नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, क्योंकि ये दो बातें पहले है ना, एक तो देही अभिमानी स्थिति नहीं है, दूसरी विदेही स्थिति नहीं है। तो अशरीरी स्थिति कैसे बनेगी, अशरीरी बनने के लिए सब कुछ भुलाना पड़ता है, आप मोए मर गई दुनिया। वैसे तो रोज रात को मर जाते हैं, नहीं जब गहरी नींद आती है उस समय क्या होता है पता है कहाँ है? कुछ भी नहीं पता होता, दो घंटा तीन घंटा गहरी नींद अच्छी आती है, अच्छी बात है। तो उस समय जैसे मुर्दे हैं ना, बिल्कुल जैसे मुर्दे को कुछ पता नहीं, तो वो ही स्थिति होती है। तो वैसे बाबा हमें कहते रोज तो रात को मरते ही हो, दुनिया मर जाती है, हम सो गए तो जैसे दुनिया ही मर गई, हम भी मर गए, तो आप मुए मर गई दुनिया। परंतु जीते जी भी कैसे दुनिया से न्यारा भी बनना है पर छोड़ना भी नहीं है, प्यारा भी बनना है न्यारा भी बनना है, जिसको बाबा कमल फूल समान कहते हैं। तो अशरीरी स्थिति कैसे बन सकती है जब पहले ये दो स्थितियां हो, देही अभिमानी और विदेश स्थिति, और उसके लिए सारा पुरुषार्थ है। तो फिर अशरीरी स्थिति तो बहुत सहज है, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं तो हूं ही आत्मा देह से न्यारी। तो बीज रूप की स्थिति, अशरीरी स्थिति या फरिश्ता स्थिति, चलो शरीर भी है लेकिन फरिश्ता रूप है, हम शरीर भी इतना हल्का है, प्रकाश का शरीर है जो जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं। अब देखो ये मोबाइल बजेंगे तो ठीक नहीं है, किसका मोबाइल है, या आज के बाद सब मोबाइल बंद, क्लास में तो बिल्कुल मोबाइल बजना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं बजना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान देंगे स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पर रख दें, परंतु मोबाइल क्लास में नहीं बजना चाहिए, थोड़ा ध्यान रहे। तो इसके लिए लक्ष्य क्या रखेंगे, उद्देश्य तो बहुत ऊंचा है, उद्देश्य है बाप समान बनना है, उद्देश्य है फरिश्ता बनना है, उद्देश्य है संपन्न संपूर्ण बनना है, उद्देश्य है देवता बनना है, पर उसके लिए लक्ष्य क्या है, छोटे छोटे लक्ष्य रखते हैं ना, जैसे बिजनेस मैन क्या करते हैं, भाई ये टारगेट है इतने तक पहुंचना है, ये 5 साल का प्रोजेक्ट है इस 5 साल के अंदर करना है, तो वो उनका उद्देश्य हो गया। लेकिन उसके लिए हर 6-6 मास का गोल रखते हैं, उसको गोल कहते हैं, जिसको लक्ष्य कहते हैं, तो वो गोल रखते हैं कि 6 मास में इतने तक करना है, फिर 1 साल में इतना, फिर 2 साल में इतना, 3 साल में इतना, फिर 5 साल में इतना। तो पहला लक्ष्य क्या हो, पहला लक्ष्य हो जिसको बाबा कहते हैं, जैसे अग्नि में कोई चीज पड़ती है ना, तो क्या होता है उसका नाम रूप गुण कर्तव्य सब बदल जाता है। कोई भी चीज आप आग में डालें वो बदल जाती है, चीज वही है लेकिन नाम बदल जाएगा। आप कोयले को डालो आग में तो कोयला थोड़ी रहेगा, क्या रहे, क्या बन जाएगा, राख बन जाएगी। तो राख और कोयला भले वही चीज है लेकिन उसको कोयला तो नहीं कहेंगे ना, नाम भी बदल गया, रूप भी बदल गया, रंग भी बदल गया, कहां वो काला और कहां वो ग्रे कलर एश कलर। तो रूप रंग फिर गुण भी बदल गया, एकदम वो काला काला लगेगा और भभूति अच्छी लगती है ना, ठंडक भी पहुंचाती है, तो सब कुछ बदल जाता, कर्तव्य भी बदल गया, तो नाम रूप गुण कर्तव्य और सब बदल गया। कोई भी चीज डालो, ईंट डालो, मिट्टी है, मिट्टी ही है, पर वो मिट्टी क्या बन जाती है, ईंट बन जाती है, इतनी मजबूत, गिराओ तो भी टूटे नहीं, ये तो मिट्टी तो टूट जाएगी, गिर जाएगी, लेकिन क्योंकि वो आग में पकी तो वो मिट्टी भी इतनी स्ट्रांग बन जाती है। और अगर कोई ऐसे कठोर चीज हो वो आग में डालो, आलू बैंगन टमाटर जो कुछ भी डालो तो वो क्या बन जाता है, बर्था बन जाता है, फिर बैंगन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, बर्था। तो देखो वो नाम बदल गया ना और उसका गुण भी बदल गया, सब बदल गया। तो इसी प्रकार इस योग अग्नि में आत्मा जो सच्चा सोना थी उसके अंदर खाद पड़ गई, उस खाद को निकालना है, माना मन बुद्धि संस्कार इन तीनों की पूरी चेकिंग, तब कहेंगे कि खाद निकली। क्योंकि मन में भी खाद है, बुद्धि में भी खाद है, क्योंकि आत्मा में कहते हैं, आत्मा माना मन बुद्धि संस्कार, तो मन में भी है, बुद्धि में भी और संस्कारों में तो है ही है। तो इसीलिए जब बाबा कहते हैं, बच्चे बाबा को कंप्लेन करते, बाबा क्या करे, पुराने संस्कार है, तो बाबा कहते पुराने संस्कार ये नहीं है, ये तो द्वापर कलयुग के संस्कार है, ये तो बाद में ऐड हुए, लेकिन जो पुराने संस्कार है, आदि संस्कार, वो तो तुम्हारे कितने शुद्ध थे। तो वो इतने शुद्ध संस्कार थे, जो देवताओं के संस्कार थे, वो अभी कहाँ है, वो तो है नहीं। आज भी अगर किसके अंदर बहुत अच्छे गुण होते हैं तो क्या कहते हैं, तो जैसे देवता कहते हैं ना, अभी भी कलयुग में भी होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी गुण नहीं है, है कई ऐसे जिनमें बहुत अच्छे गुण है, तो वैसे ही कहने में आएगा ये तो जैसे देवता। कोई बहुत धीमे बोलता है, बहुत देते, ये तो जैसे फरिश्ता। हाँ, फरिश्ता तो ये शब्द भी उनके लिए बोला जाता है। इसी प्रकार बाबा हम बच्चों को कहते हैं, उद्देश्य तो बहुत ऊंचा है, लेकिन उसके लिए छोटे छोटे लक्ष्य। संस्कार भी किस आधार पर बनते, कर्मों के आधार पर बनते, और कर्म भी किस आधार पर बनते, हमारी सोच के आधार पर, उसी के आधार पर बोल होते, उसी के आधार पर कर्म होते, उसी के आधार पर संस्कार बनेंगे। तो इसीलिए हर वक्त चेकिंग, जिसको बाबा कहते हैं चेक एंड चेंज। तो ये 3 दिन आपको यही करना है, जो भी आप सुने तुरंत अपने अंदर उसकी चेकिंग करें, और चेकिंग करके पता चलेगा कि क्या कमी है मेरे अंदर। क्योंकि एक है कमी, दूसरी है कमजोरी। तो कमी जो है वो भरनी है, और कमजोरी जो है वो निकाल दी है, या अवगुण जो है वो निकालना है। तो कमी और कमजोरी, तो कमी क्या है वो देखनी है, देवताओं से अपनी भेंट करनी है। भक्ति मार्ग में तो हम केवल गाते थे, देवताओं की महिमा करते थे, हम थोड़ी जानते थे कि हम ये बन सकते हैं। अब बाबा ने हमें ये लक्ष्य दिया है, इसलिए हम उनसे कितना दूर है, ये अपनी चेकिंग, ये गुण जो इनमें है मेरे अंदर कितने आए हैं, ये अपनी चेकिंग। तो ये 3 दिन अपनी चेकिंग करना, ये नोट करना, ये सारे गुणों की लिस्ट, कौन कौन से गुण मेरे अंदर है, कितनी परसेंटेज में है, और कितनी परसेंटेज में और धारण करना है जो मैं सर्वगुण संपन्न बन सकूं, और कितनी मेरे अंदर पवित्रता है वो संस्कारों में, क्योंकि स्वप्न से हमारे संस्कारों का पता चलता है। मेरे संस्कार कैसे हैं वो ऐसे पता नहीं चलता है, स्वप्न में एकदम पता चल जाता है। अगर वो स्वप्न अशुद्ध है कहीं, कुछ भी है, माना संस्कार हमारे अभी तक अशुद्ध है, ये निशानी है। अगर मेरे स्वप्न बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बड़े सुखद हैं, तो हम क्या सोचे, हमारे संस्कार भी अच्छे हैं। और अगर ये संस्कार नहीं है अच्छे ठीक, तो कैसे हम उनको परिवर्तन करें। तो बाबा हमें कहते हैं, 2 शब्द बाबा देते हैं, मन में पहले परिवर्तन करना होगा, स्टार्टिंग मन से शुरू करना है। तो मन में कोई भी अगर अशुद्ध विचार आता है, कुछ भी आता है, तो जैसे ही आ रहा है तुरंत उसको नॉट, नहीं, नहीं कहना है, तभी वो रुकेगा, नहीं तो वो बहता जाएगा, चलता जाएगा। तो उसको तुरंत रोको, इतना अपने पर अटेंशन हो, नहीं। तो नहीं, जैसे ही आपने अपने मन को कहा, ऑटोमेटिकली वो संकल्प वही बंद हो जाएगा। तो चेक किया, और चेंज कैसे किया, नहीं, और फिर एक होता है नॉट, माना नहीं, फिर दूसरा बाबा ने कहा डॉट, व्यर्थ संकल्प आते गए, पता ही नहीं चला कहाँ तक, कितना हमारा टाइम चला गया, क्या क्या सोच लिया, व्यर्थ बातें। तो बाबा कहते बिंदु लगा दो, वो व्यर्थ सोचने की जरूरत ही नहीं, जो बीत गया वो बीत गया। वैसे भी कहते हैं, जो रात गई बात गई, रात गई बात गई, वो रात को वो बात पकड़ के रखी तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले दिन के लिए, अगले दिन भी वही संकल्प से उठेंगे, इसलिए रात को जब बाबा की गोद में सो जाओ वो बात पूरी हो गई, खत्म। लेकिन क्या उनसे मैंने शिक्षा ले ली वो ग्रहण कर लिया और अपने अंदर परिवर्तन कर लिया। तो इसको की कहते हैं स्वाध्याय, स्व का अध्ययन। तो एक नॉट, दूसरा डॉट, नहीं तो एक सेकंड में ब्रेक लग जाएगी उस अशुद्ध विचार को या व्यर्थ विचार को। और ड्रामा के पट्टे पर तो हर वक्त चलना है, पर ड्रामा का पट्टा ऐसे नहीं कि हर वक्त माना चलो जो होगा ड्रामा तो हम कुछ भी ना करें। कुछ भी हो गई बात, उस बात को बढ़ाओ नहीं। बात बड़ी नहीं होती है, लेकिन जब बात को हम ज्यादा सोचते हैं या बहुत वर्णन करते हैं वो बड़ी हो जाती है। बाबा कई बार कहते हैं ना वो बात ज्यादा समझदार है। कैसे समझदार है? वो तो एक ही बार आती है बात, बस सारे कल्प में वो बात एक ही बार आएगी, फिर ऐसे थोड़ी रिपीट होगी, वो दूसरे रूप से आएगी। तो वो बात ज्यादा समझदार है, वो दोबारा नहीं आएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, उसी बात को पकड़ के रखते हैं, और पकड़ के रखा तो नुकसान किसको है? बात को तो कोई नुकसान नहीं है, नुकसान तो हमारा ही है। इसीलिए छोड़ो तो छूटो, तो हम लोग कहते छोड़ो तो छूटो, पकड़ के रखा तो खुद ही बंद गई। कई बार कहते हैं ना किसी को मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ, मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ, तो उसको क्षमा नहीं कर सकते हैं ये चलो ठीक, पर खुद को क्षमा नहीं कर पा रहे तो उसमें उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपने क्षमा नहीं किया उनके उनको, लेकिन खुद को नहीं किया माना इतना पकड़ के रखा है। और पकड़ के रखेंगे तो नुकसान तो हमको ही होगा। तो इसीलिए क्षमा करो और भूल जाओ, क्षमा करो और भूल जाओ, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ये सब साइट सीन्स है। देखो बाबा की हर मुरली में कितनी गहरी गहरी बातें हैं, पर कितना हम उनको अपने जीवन में धारण करते हैं ये हमें देखना है। ठीक है, तो लक्ष्य भी मिला और उद्देश्य भी मिला। बाकी हमारी शील बहन कह रही थी वो सुनाओ। तो पहले तो मैं ये देख, मुझे तो बहुत खुशी है उत्तराखंड से भाई बहने आए हैं। मैं पिछले साल ही आई थी ना आपके पास, देहरादून भी गई थी हमारी, क्या ये मीना बहन ना, मीना बहन देखो मुझे नाम भी याद है, और ये हा? सोनिया बहन, हाँ फाल्गुनी बहन, फाल्गुन हाँ। तो ये मैं उत्तराखंड में गई थी, वहाँ भी गई थी, देहरादून गई थी, फिर मसूरी, मसूरी है ना, मसूरी गई थी, हरिद्वार गई थी, ऋषिकेश गई थी, तो सब याद है। और मैंने खास काम को हरिद्वार जाना है क्योंकि वहाँ हर की पौड़ी है। तो हर की पौड़ी दिखाने लिए हमारी मीना बहन हमको ले, मीना आप चले थे ना, तो मीना बहन चली थी खास, लेकिन इतनी भीड़ थी तो हमने कहा बस बस देख लिया। तो वैसे पहले तो गई हूँ मैं, ऐसे नहीं कि नहीं गई हूँ, लेकिन बहुत साल हो गए जब मैं हरिद्वार गई थी, लेकिन इतने सालों के बाद जाना हुआ। और ऋषिकेश भी मैं गई थी, लेकिन सब कुछ बदल गया, कुछ याद तो था नहीं। और देहरादून तो पहली बार गई थी, और खास पिछले साल था, पिछले साल इस साल उषा बहन आई ना, प्रेम बहन के उनकी वर्षी पर। तो इसलिए जो उत्तराखंड के हैं वो हाथ उठाए। अच्छा, तो आप सबसे मिले हैं ना हम वहाँ, आपके वहाँ क्लास नहीं कराया, हरिद्वार में क्लास नहीं कराया, केवल कराया था। अच्छा अच्छा, पर वहाँ नहीं कराया था, ये मसूरी में नहीं कर, मसूरी में भी नयों से मिले थे, थोड़ा सा मिले थे। और दूसरे हैं दिल्ली के हाथ उठाए। अच्छा, कौन सा सेंटर, मेरठ से हैं? अच्छा मेरठ से हैं, मोदी नगर, अच्छा मेरठ, मोदी नगर मेरठ। अच्छा हाथ उठाए सभी। अच्छा अच्छा, आधा आधा है, तो बहुत अच्छा आप सभी आए। ये हर की पौड़ी कैसे नाम बाबा ने दिया, तो मैं विदेश में थी, अफ्रीका में थी, अफ्रीका मॉरिशियस में मैं 74, 75, 76 ये दो ढाई साल मैं अफ्रीकन कंट्रीज में सेवा की, मॉरिशियस में सब सेंटर खोले उस वहां जाकर के। और फिर मैं मधुबन आई और दादी जी ने मुझे मधुबन में रखा, क्योंकि यहाँ फॉरेनर्स आना शुरू हो गए थे, सेंटर सब जगह खुलते जा रहे थे विदेशों में, तो यहाँ टीचर की जरूरत थी जो विदेशी भाई बहनों का क्लास कराए, ट्रांसलेशन करे। और मुझे अनुभव हो गया था 2 साल विदेश में रह करके। और दूसरा, यहाँ राजयोग भवन बना था जहाँ ये लक्ष्य था कि VIPs को हम बुलाएं और उनके लिए शिविर का प्रोग्राम, रिट्रीट जैसे वहां पर करें। तो उसके लिए मधुबन में कोई टीचर की जरूरत थी, क्योंकि बाबा के दिनों में, साकार बाबा के दिनों में तो बाबा बहनों को रखते ही नहीं थे मधुबन में। बाबा कहते थे बहने माना सेंटर्स पर रहे, यहाँ केवल भाई, क्योंकि कारोबार बहुत है, फिजिकल स्थूल काम बहुत है, इसलिए इसका नाम ही रखा पांडव भवन। तो पांडव भवन माना पांडवों का भवन है, भाई रहते हैं, तो बहनों को बाबा अलाउ नहीं करते थे। तो लेकिन बाबा जब अव्यक्त हुए तो दादी जी यहाँ, दादी जी रहे, दीदी और दादी थे। तो अब इतना सारा अभी यहाँ शुरू करना था, क्योंकि अव्यक्त बाबा ने कहा कि यहाँ क्लास, यहाँ पर बठिया रखो, ट्रेनिंग रखो, ये रखो, वो रखो। और बाबा के अव्यक्त होने से सब दादियों को बाबा ने मधुबन में बुला लिया, तो सब यहाँ ही जैसे आ गए। जब वहां से आए कराची से, तो बाबा ने सब दादियों को अलग अलग सेवा केंद्रों पर भेजा, नए नए सेंटर्स सारे भारत में खुलवाए, और सब दादियां बाहर गई, किसी को यहाँ नहीं रखते थे बाबा। अगर आते भी थे, कोई दादी आती थी, नेक्स्ट डे बाबा उनको भेज देते थे। लेकिन बाबा के अव्यक्त होने के बाद जरूरत पड़ी, क्योंकि यहाँ पर अभी ये सब करना था और विदेश में हमारे सेवा केंद्र खुल चुके थे, तब दादी जी ने मुझे मधुबन में रखा। क्योंकि सोचा कि, क्योंकि इंग्लिश हैंड भी है, इंग्लिश हिंदी तो सब अनुभव भी है, तो मधुबन में रहना शुरू किया। और 3 साल तक मैं कहीं नहीं गई, 3 साल यहाँ, इतना ही सेवा थी विदेशों में, और यहाँ रहना शुरू किया तो कहीं नहीं गई, यहीं पर, क्योंकि सेवा तो बहुत थी। तो कभी कभी संकल्प चलता था कि अभी मुझे कहीं जाना नहीं मिलेगा क्या, थोड़ा कभी संकल्प आया। तो एक दिन अव्यक्त बाप दादा के सामने हम गए, तो बाबा ने मेरे से पूछा, आप कौन सी गंगा हो, कौन सी गंगा हो? तो मैंने कहा ज्ञान गंगा हूँ। तो बाबा ने, ज्ञान गंगा ही तो सब है, आप कौन सी विशेष गंगा हो? तो मैंने कहा बहती गंगा हूँ। तो बाबा ने कहा बहती गंगा तो वो है जो सेंटरों पर रहती है, वो बहती गंगा ही है। क्यों? क्योंकि गंगा तो बहती जाती है, आज वो बहन एक सेंटर पर, कल वो दूसरे सेंटर पर ट्रांसफर हो जाएगी, परसों तीसरे सेंटर पर ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन जो स्टूडेंट्स है वो तो वहीं रहते हैं ना, वो सेंटर पर जाते हैं, अभी टीचर तो बदलती रहती है। तो जो सेंटरों पर रहती है वो बहती गंगा है, वो बहती ही रहती है एक सेंटर से दूसरा सेंटर। आप कौन सी गंगा हो? अब मेरे से पूछा, अब मुझे तो आई नहीं कौन सा तीसरी गंगा कौन सी होती है। तब बाबा ने मुझे कहा कि आप हर की पौड़ी की गंगा हो, जहाँ सारी दुनिया आकर के नहाएगी, आप ऐसी गंगा हो। मेरे लिए तो ये बिल्कुल बहुत सुंदर वरदान था। तो उसके बाद ये संकल्प ही मेरा खत्म हो गया कि मुझे कहीं जाना है, यही बाबा की सेवा करनी है मधुबन के अंदर। और सब हमको यही याद दिलाते थे, आप कितनी भाग्यशाली हो, कितनी भाग्यशाली हो, देखो मधुबन में आप रह रही हो, आप मधुबन में रह रही हो। तो इसलिए बाबा ने भी ठप्पा लगा दिया और सबने, तो इसलिए बुद्धि कहीं जाती नहीं थी, सोचा भी नहीं कि मुझे कहीं जाना है। लेकिन फिर धीरे धीरे कैसे विदेशों से निमंत्रण मिलते गए और फिर हमारा जाना हुआ। और हर साल लगभग बाबा भेजते हैं कहीं न कहीं, अभी श्रीलंका होकर के आई, वो भी 4थी बार गई हूँ, 3 बार पहले गई हूँ, और फिर अभी परसों बताया साउथ अफ्रीका जा रही हूँ, क्योंकि खास करके रक्षाबंधन पर चाहते मधुबन से कोई बहन आए, तो इसीलिए साउथ अफ्रीका जा रहे। वहां भी मैं 1 बार पहले गई हूँ, कुछ साल, कई साल पहले, तो वहां पर जाना हो रहा है, तो इसीलिए जाते रहते हैं। करीब 75 देशों में जाना हुआ और कई बार गए हैं। और तो ये बाबा ने वरदान दिया। और दूसरा जो सरस्वती का वरदान बाबा ने दिया, तो मैं कुछ संकल्प कुछ भी नहीं था, मैं गई हुई थी हैदराबाद। हैदराबाद में वहाँ नागार्जुना फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन में प्रोग्राम था, तो वहाँ पर प्रोग्राम किया और वहाँ का जो ये मैनेजिंग डायरेक्टर है केवीके राजू थे और उनके साथ ही एग्जीक्यूटिव्स थे सब, तो वो मधुबन में आए थे खास बाप दादा से मिलने के लिए। तो मैं उनको हिंदी नहीं आती थी, मैं ट्रांसलेशन कर रही थी उनका, तो सबका कर लिया, सबका पूरा हो गया और मुझे लगा कि बस बाबा मुझे एक टोली देंगे, क्योंकि बाबा मिलते थे सबसे, तो ऐसे ही मैंने हाथ किया जैसे बाबा से टोली ले ली, उनका ट्रांसलेशन कर दिया। उसके बाद बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और इतना टाइट पकड़ा और इतनी प्यार से दृष्टि दी, इतनी प्यार से दृष्टि दी और फिर बहुत सुंदर वरदान दिया। बाबा ने वरदान दिया कि ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी जुबान पर है, ये बाबा ने उस समय वरदान दिया। तो ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी जुबान पर है, बस इतना ही कहा। बस फिर तो अब उसके बाद तो मेरा मन संकल्प बहुत चलने लगे, मैंने कहा बाबा ने इतना वरदान दे दिया, बाबा हमसे क्या चाहते हैं, मैंने उस रूप से सोचा। दो बातें मैंने सोची, एक तो ये सोचा कि जरूर बाबा को मेरे से कुछ और बड़ी सेवा करवानी है, ये पहली बात, इसलिए बाबा ने हमको पहले से वरदान दे दिया, तैयार कर दिया। और दूसरा सोचा कि अगर इस जुबान पर सरस्वती का वास है तो फिर इस जुबान से कोई गलत बोल, कोई अपशब्द, कुछ ऐसा व्यर्थ ये सब नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की सरस्वती का वास है। तो ये जो दो बातें थी ये सदा बुद्धि पर चली, पर ये भी साथ में था बाबा मुझसे क्या सेवा करवाएंगे, ये बाबा ने वरदान दिया इसके पीछे कोई राज होगा। और बस थोड़े समय के बाद ये टेलीविजन के प्रोग्राम शुरू हुए, जो टीवी का प्रोग्राम शुरू हुआ तब तक दूरदर्शन ही था, टेलीविजन भारत जो गवर्नमेंट का चैनल था, और उसमें तो कोई आध्यात्मिक प्रवचन तो लेते नहीं थे, न कभी हम लोगों को चांस मिला। लेकिन उसी साल में 92 में आप जानते होंगे वो बाबरी मस्जिद, हाँ बाबरी मस्जिद वो उसकी ढाई गई थी। सतीश भाई मैं पूरा करूंगी। तो 92 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी और बहुत उसके बाद हंगामा हुआ था भारत में, हिंदू मुसलमानों का बहुत झगड़ा हुआ था। तो उसके बाद 93 में सबसे पहला प्राइवेट चैनल शुरू हुआ जी टीवी, ये प्राइवेट चैनल्स है, तो सैटेलाइट के थ्रू वो चैनल जैसे चलना शुरू हुआ और वो चैनल 160 देशों में 60 देशों में उस चैनल वो जा सकता था, मतलब सैटेलाइट के थ्रू। तो वो प्राइवेट चैनल शुरू हुआ, जी टीवी सबसे पहला प्राइवेट चैनल चालू हुआ। तो उन्होंने निमंत्रण दिया कि आप लोगों का हम आध्यात्मिक प्रवचन रखना चाहते हैं, और ये करुणा भाई को मिला प्रोग्राम, निमंत्रण मिला। तो उसने दादी जी को कहा कि दादी जी ऐसे ये प्राइवेट चैनल्स चालू हुए हैं और जी टीवी में निमंत्रण मिला है ब्रह्मा कुमारियों का कुछ लेक्चर हो। तो दादी ने मुझे बुला लिया, मैं तो मधुबन में रहती थी, कि आप जाओ और वहां पर आपको टीवी में लेक्चर करना है। पहली बार कभी उसके पहले टीवी वो ऐसे वीडियो कैमरा सामने कभी नहीं इस रूप से देखी, आजकल तो सब सहज है लेकिन उस समय की बात है, 92-93 की बात है। तो कहा कि आपको टीवी के लिए लेक्चर देना है। तो मैंने कहा मुझे क्या बोलना है, तो करुणा भाई कुछ नहीं बोलना है, बस आप बोलना आत्मा परमात्मा का ज्ञान ही देना। मैं सोचे वो तो बहुत सहज है, मैं तो शिविर कराती हूँ तो बहुत सहज है। तो मुझे बॉम्बे लेके गए और बॉम्बे में वो टीवी स्टूडियो में ले गए और सब, तो मुझे कहा कि अभी आप आपका 25 मिनट का लेक्चर लेंगे और रिकॉर्डिंग होगी और आपको ये बातें नहीं कहनी है। क्या नहीं कहना है? अपने संस्था के बारे में कुछ नहीं कहना है, आपका जो भगवान है उसके बारे में कुछ नहीं कहना है, जिसको भी आप मानते हो उसको उसके बारे में कुछ नहीं कहना है, जो आपका गुरु है जो संस्था का स्थापक उसके बारे में भी कुछ नहीं कहना है, भारत की भी महिमा नहीं करनी है। हाँ, तो न और किसी धर्म की बात नहीं करनी है, किसी देश की बात नहीं करनी है, अपने गुरु की बात या कोई अलग ईश्वर उसकी बात नहीं करनी है, और किसी और संस्था को क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी की भी ग्लानी नहीं करनी है। तो मैंने कहा अच्छा कहना क्या है, तो बस अच्छी बातें कहो, अच्छी बातें कहो और मूल्यों की बातें करो, मूल्य, क्योंकि बहुत भारत में थोड़ा टेंशन था ये जो हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे, तो इसीलिए अच्छी बातें, सब प्यार प्रेम से कैसे रहे बस वो बताओ। और उस समय हमारे जो अलग अलग विंग्स के प्रोग्राम, उसमें वैल्यू एजुकेशन में तो वैल्यू एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी के अभी तो सिलेबस बन गए, उस समय ये सिलेबस नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो कोई ना कोई आप मूल्यों पर लेक्चर दो, मूल्यों पर। अच्छा मैंने कहा ठीक है, तो मैंने बाबा को याद किया, मैंने कहा क्या सुनाऊं, तो सबसे पहले कहा कि आप शांति पर बोलना, शांति। मैंने कहा ठीक है शांति, तो अभी शांति पर ही बोलना था, और मुझे कहा 25 मिनट आपको बोलना है। मैंने कहा 25 मिनट एक शांति पर ही, अभी कैसे बोलना है? तो कहा आपको हम इशारा देंगे 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, और फिर ऐसे गोल गोल माना 0, अभी वाइंड अप कर दो 25 मिनट, और ये कैमरा आपकी होगी, सामने होगी। तो मैंने कहा कोई सामने नहीं होगा, कैसे बोलूंगी मैं, कोई व्यक्ति नहीं सामने, खाली कैमरा ही सामने होगी। तो कहा आप ये लेंस में देखो, ये जो लेंस है ना कैमरा की लेंस, इसमें लाखों आंखें हैं, आप ये देखो, ये लाखों आंखें आपको देख रही है, ये इसके अंदर ही देखना है आपको। और फिर कैसे, क्योंकि एक ही कैमरा होती थी, अभी तो 3-4 कैमरा है, कई एंगल से लेते, उस समय वो एक ही कैमरा थी स्टूडियो में, तो वो भी कैसी थी, एक जैसे रेल ट्रेन के पट्टे होते ना, वो ट्रेन का पट्टा बना हुआ था। और कहा कि जहां कैमरा जाए वहां आपको सिर करना है, आपको मुंह करना है, यहाँ है तो यहाँ जाओ, अभी कैमरा को ही देखते रहो और बोलो, अब कैमरा को देखूं या सोचूं। लेकिन हमने और ऐसे बना हुआ था, अभी तो स्टिल है ना, हमको यही देखना है, वो अपने आप पोज लेते हैं, साइड का पोज या सामने का पोज या डबल जो भी लेते हैं, तो उस समय ये सब नहीं था। और उस समय और कोई सामने नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई हाँ हाँ करे तो अच्छा भी लगता है। तो वो भी कुछ नहीं, लेकिन बाबा ने कैसे करवाया, तो ये भी जैसे बाबा का वरदान था, तो उनको बहुत अच्छा लगा, फिर कहा और करो और करो और करो, फिर और टीवीज ने निमंत्रण दिया, तो इस प्रकार बाबा का कार्य शुरू हुआ। जो वरदान मिला था वो बाबा को, बाबा ने भविष्य देखा और वो वरदान दिया बाबा ने, तो ये बाबा की कमाल है। और बाबा को ही थैंक्स देते हैं, उसी ने करा, हमने तो कुछ नहीं किया, ठीक है ना। चलो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
शीलू बहन का बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी लगी ना सबको हर की पौड़ी की कहानी सुनकर। तो शीलू बहन ने हम सबको भट्टी का उद्देश्य, लक्ष्य और इस पांडव भवन का महत्व बताया। आज इस भट्टी की शुरुआत है, प्रारंभ है, लेकिन हम लोग इसका अंतिम दिन देख रहे हैं, जब आप सब यहाँ से क्लासेस करके कुंदन की तरह चमक करके निकलेंगे, ऐसा शीलू बहन आशा करती हैं, और इसीलिए उन्होंने इतनी अच्छी प्रेरणा दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।